आए, चाचा आए, मामा आए, कोई मिठाई लेके आए, क्या बड़ी उत्कंठा उत्सुकता रहती है। तो ये पहुंच गए तो पटेल ने पूछा, तुम्हारे डैडी है, मैं मिलना चाहता हूं। तो वो बच्चा गया, पाटिल का घर तो बहुत बड़ा घर है, तो देखा, ढूंढा, इस कमरे में नहीं, उस कमरे में नहीं है, एक कमरे में देखा, भाई इडियट बॉक्स के सामने बैठे थे पाटिल साहब। तो बच्चे ने कहा, ओ पटेल, ओ पटेल, आपके मित्र हैं ना पटेल, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो मिलने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि उनको कहो कि मैं यहां नहीं हूं। तो बच्चा दौड़ के द्वार पर आ गया और पटेल जी से कहता है, मेरे डैडी ने कहा कि वे यहां नहीं है, कहा किसने? डैडी ने कहा। क्या कहा? मैं यहां नहीं हूं। ये बात स्पष्ट करने के लिए हमने ये वाली बात कही कि जो लोग कहते कि भगवान नहीं है, किसने कहा भगवान नहीं है? भगवान नहीं कहा। खुश रहो बेटा, भगवान नहीं है करके, क्योंकि भगवान है तो फिर कई सारे नियम, पाप है, ये पुण्य है, या कई सारे झमेले होते हैं, भागवत कथा उसमें जाना पड़ता है। चलो ऐसा इस निर्णय तक पहुंचो, निष्कर्ष तक, कि भगवान है ही नहीं तो फिर पाप पुण्य से मुक्त हो गए। किसने देखा है? कुतः पुनरागमनो भवेत, किसने देखा ये पुनरागमन? यावत जीवेत सुखम जीवेत। चलो बस, जब तक जीवित हो सुख से चैन से जियो, और आवश्यकता है तो क्या करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पियो घी। चार्वाक मुनि कह रहे, आप घी कैसे पिएंगे भाई, जेब में पैसा नहीं। ऋणम कृत्वा, ऋण निकालो, कर्जा निकालो, या डाका डालो, भगवान तो है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, लेकिन करना क्या है? यावत जीवित सुखम जीवित, बस जीवन का ये लक्ष्य है, जब तक जीवित हो सुख से जियो, और हर प्रयास करो सुख से जीने का, और फिर वो सही गलत वो प्रयास हो सकता है। तो भगवान से ही मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, स्मरण है तो भगवान की कृपा से ही हमको ये स्मरण हो रहा है अभी, लेकिन भूलना चाहते तो वैसी व्यवस्था भगवान कर सकते हैं, या राय रामानंद के लिए भी व्यवस्था है, वह कहते जाते हैं क्या इतनी मेरी सीमा है, नहीं नहीं और कहो, जैसे तैयार होते ही कहने के लिए तो अंदर से फिर भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धि योगम करके उनसे कहलवाते हैं, ये कहाओ सही कही वाणी, आप जैसे कहोगे वैसे ही मैं कहूंगा। त्रिभुवन मध्य ऐसे हय कौन धीर, जे तुमार माया नाटे है ये के स्थिर। राय रामानंद जी आगे कह रहे, त्रिभुवन में सारे ब्रह्मांड में आप जैसा और कौन धीर गंभीर है? धीर मतलब जो कभी विचलित नहीं होता, यहां तक कि मृत्यु भी समक्ष है, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, ऐसे धीर आप हो। वैसे भगवान के समक्ष तो मृत्यु का आना संभव भी नहीं है, मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम्, मृत्यु के भी मृत्यु है भगवान। जब नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं तो इस प्रकार हम लोग प्रार्थना, आप भगवान कैसे हो, ज्वलंतम सर्वतो मुखम, और उग्रम वीरम महाविष्णु, ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम। नरसिंहम, आप नरसिंह हो और आपका सारा रूप भीषण भयानक है, और साथ ही साथ वो भद्र है, अभद्र नहीं है, मंगल है, दिव्य है, और आप मृत्यु के भी मृत्यु हो। तो ऐसे भगवान तो धीर कहलाएंगे ही, तो ऐसे है कौन आप जैसा और कौन धीर गंभीर है। ये तुम्हार माया नाटे हई बेक स्थिर, और तीनों लोकों में ऐसा कौन अविचलित व्यक्ति होगा जो आपकी विभिन्न शक्तियों के अदलने बदलने पर स्थिर न रह सके, स्थिर रह सके। तो औरों को तो क्या उनकी इस कृपा से और भी स्थिर हो सकते हैं, नहीं तो सारा संसार कैसा है, अस्थिर है। कमल दल जल जीवन टलमल है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। किसी ने गीत ही बनाया, क्या भरोसा है कोई भरोसा, क्या भरोसा है। बस इस क्षण का अब हम है इतना कह सकते हैं, आज क्या होगा दिन में नहीं कह सकते, इसलिए इस क्षण का हम लाभ उठाते। चलिए एक क्षण हमारे हाथ में है, इसका लाभ उठाएंगे तो फिर वो नींव बनेगी, फाउंडेशन बनेगा हमारे जीवन का, और उस पर एक दिव्य भगवान के भक्ति का प्रासाद हम खड़ा कर सकते हैं, और वो गगन चुंबी भी हो सकता है, गगन को चुंबन करने वाला इतना ऊंचा पहाड़, पहाड़ नहीं पहाड़ जैसा ऊंचा प्रासाद हम लोग बना सकते हैं अगर इसका आधार है, आधार है ये कृष्ण भक्ति साधना। यस, नहीं तो कमल दल जल। तो ये इस क्षण का भरोसा है जो हमारे हाथ में अब है, भूतकाल का तो वो तो छूट गया, उसको वापस ला सकते हैं क्या, गया तो वो गया ही सदा के लिए। आप करोड़ों रुपए खर्च करो या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट से भी वो क्षण वापस नहीं आने वाला है, और भविष्य किसने देखा है, भविष्य दूर है आगे है। अब हमारे हाथ में क्या, अब जो है, इसीलिए हमारे कुलशेखर अलवार उन्होंने भी कहा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयान समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। नहीं नहीं मैं रुकना नहीं चाहता हूं बूढ़ा होने तक, मृत्यु के समय तक अभी अच्छा है। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, मेरे राजहंस मन, इसकी तुलना हंस के साथ, और आपके चरण कमल कैसे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज, पद पंकज आपका चरण कमल है, आपका चरण ही कमल है, आपका चरण रूपी कमल और मेरा मन रूपी हंस राजहंस, जोड़ी अच्छी है, जहां कमल के फूल खिलते हैं वहां किनका निवास होता है, वहां हंस विचरते रहते हैं, विद्यमान होते हैं। तो अच्छा है कि अभी अभी अद्यैव मे विशतु, इसी क्षण अच्छा है प्रभु मेरे मन को प्रवेश करने दो आपके चरणों में ही। मतलब दूसरे शब्दों में प्रैक्टिकली क्या कहा जा सकता है, भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ही भव सिंधुरे। ये विचार सर्वत्र मिलेंगे। फिर लेकिन ये विशेषता भी है, अलवार कौन, कुलशेखर अलवार, उन्होंने कहा अद्यैव, जब बूढ़े होंगे और मृत्यु जब पास में आएगा, फिर कंठावरोधन विधो क्या होगा, कंठावरोधन आपको क्या लगा, महाराज जा रहे लेकिन राम राम भी नहीं किया हमको, कंठावरोधन विधो, अभी तो हंसने में अच्छा लगता है लेकिन उस समय अगर कोई हंस सकता है, जो प्रभु के भक्त है, धीरस तत्र न मुह्यति वाले जो है, या जिन्होंने खूब प्रार्थना कर करके क्या किया है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, उसकी तैयारी है। वैसे ये सारा जीवन किसकी तैयारी है, हम लोग केवल जीने की राह ही नहीं मरने की कला भी सीखते हैं। क्या मरने की कला कहो या मरने का शास्त्र कहो, और लोग तो मरना चाहते नहीं लेकिन मृत्यु पीछा छोड़ता तो नहीं, लेकिन हम लोग उसके सम्मुख जाते, उसकी तैयारी करते हैं। ये कथा श्रवण ये तैयारी, उस क्षण की तैयारी, ताकि क्या होगा, प्रभु आएंगे, स्वयं आएंगे और क्या करेंगे, राधा को साथ ले आया, राधा को भी साथ लेके आएंगे। तो फिर संभव होगा, तो उस स्थिति में भी चेहरे पर हास्य हो सकता है, रोने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने जन्म लिया तो हमने क्या किया, उस समय हम रोए और दुनिया क्या कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन हम जब मरेंगे तब हम हंसेंगे, और ऐसी करनी करते ही चलो। तो वो करनी है, भगवान की भक्ति है, भगवान की शरणागति है। तो भगवान बुद्धि देने के लिए तैयार है, या खूब बुद्धि दे रहे हैं राय रामानंद को, अपने ही वचन राय रामानंद के मुख से बाहर प्रकट हो रहे हैं। मोर मुखे वक्ता तुमी हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। राय रामानंद ने क्या कहा, मोर मुखे वक्ता तुमी, मेरे मुख से जो बोल रहे हैं वो वक्ता कौन है, तुमी आप ही हो। कहा मैं बोलने के लिए, आप और आगे कहो, आर आर आपने कहा, मुझे प्रेरित कर रहे हो, चलो ठीक आई एम रेडी। तो मैं अब कहूंगा, लेकिन वक्ता वैसे आप ही वक्ता होंगे, बोलने वाले आप होंगे और तुम ही हो श्रोता, और सुनने वाले श्रोता भी कौन? आप ही श्रोता, वक्ता आप, श्रोता आप। जब वर्षा होती है, कई बार जो बादल होते हैं वो समुद्र में ही वर्षा करते हैं, तो उस बादलों के पास जो जल की धाराएं हैं, जल के बिंदु है, जल है, वो बादल अब समुद्र को दे रहा है, लेकिन बादल ने वो प्राप्त किया कहां से? उसी सागर से प्राप्त किया, थोड़ा ऊपर लेके गया और वहां से गिरा दिया, और अपने को क्रेडिट ले रहा है, इसमें मैंने वर्षा की, मैंने जल दिया। तो जल दाता तो समुद्र है, अंबुधी अंबु का सागर है, और बादल है जल दो, जल देने वाला बादल, लेकिन उस वो जल आया कहां से? अंबुधी से तो आ गया, जो प्रशांत महासागर है, कितना सारा जल है, वही से उसी से थोड़ा जल ऊपर बादल के रूप में जाके छिड़का देता है उस जल को। जैसे वही बात है, और फिर वह सांदीपानी मुनि भी जो शिक्षा दिए कृष्ण को, वहां पर भी यही भाव है। कृष्ण सीख रहे सांदीपानी मुनि से, लेकिन वहां भी सिखाने वाले और सीखने वाले कौन है? कृष्ण ही है। अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा, तो साधने साधना की कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राधा कृष्णेर लीला यही अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे नाहय गोचर। राधा कृष्ण लीला तो अति गूढ़तर है, गूढ़ है, गुह्य गोपनीय है ये राधा कृष्ण की लीला। और राधा कृष्ण की लीला दास्य वात्सल्य सख्य भाव से नहीं जानी जा सकती, ऐसे कहा जा रहा है। मतलब ये साधन है, दास्य भाव भी एक दास्य प्रेम एक साधन है, सख्य प्रेम एक साधन है, वात्सल्य प्रेम एक साधन है, लेकिन इन साधनों से राधा कृष्ण प्रेम को नहीं समझ सकते, उसके लिए और एक भिन्न प्रकार के प्रेम की आवश्यकता है, और वो है माधुर्य प्रेमा भक्ति, माधुर्य रस जिसके पास है, माधुर्य भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही राधा कृष्ण की लीला को समझ सकता है। इसी बात को आगे अब रामानंद राय समझाएंगे। सबे एक सखी गणे रईह अधिकार, सखी हैते होय एई लीलार विस्तार। बस केवल सखी गणों का इस पर अधिकार है, ये राधा कृष्ण लीला में प्रवेश या राधा कृष्ण का लीला का ज्ञान, इसका तत्ववेत्ता होना, ये केवल सखी गण कर सकती है। सखी है ते हय इह लीलार विस्तार, और इन सखियों की मदद से ही भगवान क्या करते हैं? इस लीला का विस्तार करते हैं। सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला विस्तार या सखी अस्वादोय। क्या कहा? सखी बिना, सखियों के बिना इस लीला की पुष्टि संभव नहीं है, इस लीला को रष्ट पुष्ट बलवान करना है तो किसकी मदद की जरूरत है? सखी, सखियों के बिना ये लीला पुष्ट नहीं होगी, कमजोर रहेगी या संपन्न भी नहीं होगी। सखी लीला विस्तारी या सखी अस्वाद, तो सखिया ही इस लीला का विस्तार करती है और सखिया ही इस लीला का आस्वादन करती है। सखी बिना यही लीला यो अन्यर नाही गति, सखी भावे जे तारे करी अनुगति। तो औरों का एरिया गवाड़े काम नहीं, पाहिजे त्याला कोणी, पाहिजे जातीचे, ते काम नव्हे रे एरिया गवाड्याचे। ते दुसरे जे एरे गवाळे आहेत त्यांचा अधिकार नाही, बस अधिकार या राधा कृष्ण लीलेवरती कोणाचा आहे, अन्यर नाही गती पाणी जा सकत। सखी भावे जे तारे करे अनुगति, और एक पार्टी का नाम यहां ले रहे जिसमें शायद हम लोग फिट हो सकते हैं, और वो है सखी भावे जे तारे करे अनुगति, जो गोपियों के चरण चिन्हों पर चलते हैं और गोपी भाव का, गोपी का अनुगत्य स्वीकार करके जो सेवा करना चाहते हैं, फिर पुनः वही वृंदा देवी की जो वंदना हम लोग करते हैं, ऐ निवेदन धर सखीर अनुगता कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। ये जो भाव है, ये जो निवेदन है, ये जो अनुगत्य है, हां हां आप गोपियों का अनुगत्य स्वीकार कर रहे हैं, हम आपको सेवा का अधिकार दीजिए, ऐसी भीख मांगनी होगी। ललिता सखी आदि जत सखी वृंद, और फिर आगे अज्ञाय पाई, अज्ञाय अज्ञा से, उनकी अज्ञा से होगी। नरोत्तम दास ठाकुर जो गीत गा रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, तो राधा कृष्ण के लीला में सेवा में वो स्वयं भी प्रवेश चाहते हैं, तो उन्होंने उस गीत में कहा है ललिता सखी आदि जत सखी वृंद, जो ललिता विशाखा आदि और भी गोपिया सखिया जो भगवान की आपकी राधा कृष्ण की सेवा कर रही है, तो उनकी आज्ञा प्राप्त करके उनके अनुमति से उनके अनुगत्य शीलन से मैं भी कुछ सेवा, अगर कोई नौकरी चाकरी थोड़ी झाड़ू लगाने की अगर मिल सकती है, मेरा भी एप्लीकेशन स्वीकार कीजिए, मेरे प्रस्ताव को सुनिए। तो ऐसे भाव के साथ, ऐसा अनुगत्य स्वीकार करके करने वाले जो साधक भक्त है, ऐसी जिनकी साधना है, वे भी भविष्य में अधिकारी बन सकते हैं, पूरी पात्रता उनमें भी आ सकती है। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाए, सही साध्य पाई तैयार नहीं कहु पाए। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य सही पाए, तो वही व्यक्ति जिनका अभी वर्णन किया, वही राधा कृष्ण कुंज सेवा उनको साध्य होगी, सही साध्य पाई तैयार नहीं कहु पाए, और कोई उपाय नहीं, या तो गोपिया या गोपियों जैसा जिनका भाव है। रम्या काचिद उपासना व्रज वधुवर्गेन या कल्पिता, चैतन्य महाप्रभु के या गौड़ीय वैष्णव के जो सिद्धांत है, इसमें ये एक मुख्य सिद्धांत है। हम भक्ति करते हैं किन कि इस भक्त को हम आदर्श मानते हैं, गौड़ीय वैष्णव उनका आदर्श है रम्या काचित, रम्या वो जो रमणीया है, वो गोपिया है, वो ललनाए जो है वृंदावन की, रम्या काचित उपासना, उनकी जो उपासना, उनकी जो आराधना की पद्धति है, उस पद्धति का अवलंब करके भक्ति करने के लिए कहा है, या गौड़ीय वैष्णव उस प्रकार की भक्ति करते हैं। निकुंज योनो रति केली सिद्ध्यै या लिभिर युक्तिरपेक्षणीया। बहुत ऊंची बात है डोके और जाने सर की वरुण, तो राधा कृष्ण की लीला में सहायता करने वाले कई सारे भक्त होते हैं। हमारे रूप सनातन, ये राय रामानंद और कई असंख्य नाम, ये गोपिया है, सखिया है, जिनको सदैव अधिकार प्राप्त है राधा कृष्ण की सेवा में, वो नियुक्त रहते हैं, कई प्रकार से राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं, राधा कृष्ण मिलन के लिए सारा अनुकूल जो भी मंच है, वातावरण है, व्यवस्था है, वो करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य गण रहे हैं, ऐसे आचार्यों की परंपरा में हम आते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरुजन जो राधा कृष्ण लीला के अंग है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, तो उनका ये आंखों देखा वर्णन उन्होंने या तो लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों को ग्रंथ निर्माण के लिए प्रेरणा दी, और कईयों से तो स्वयं भी कहे, सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया, फिर ग्रंथ बने, और रूप गोस्वामी को उपदेश दिया, वो दशाश्वमेध घाट पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर, उसी से भक्ति रसामृत सिद्धु बना, हरि भक्ति विलास ग्रंथ बने, ऐसे कई सारे ग्रंथ, तो स्वयं तो चैतन्य महाप्रभु लेखक या उपदेशक वक्ता नहीं बने, लेकिन भक्तों को माध्यम बना के, जैसे यह रामानंद के साथ यह संवाद, ये तो भगवत गीता तो एक प्रारंभिक श्री गणेश जैसी चर्चा है उस संवाद में, जिसको अद्भुत संवाद कहा है, कृष्ण और या केशव, कृष्ण और अर्जुन के मध्य का वो संवाद, फिर पुनः ये संवाद है, फिर उद्धव और कृष्ण के साथ का संवाद भी है 11वें स्कंद का, उसमें भी वैसे भगवत गीता जैसी कुछ बातें हैं, लेकिन ये जो संवाद है बड़ा ही गोपनीय संवाद है, आगे की बातें हैं। गीता में जो संवाद है उससे भी ऊंचा, भागवत में जो संवाद है उससे भी ऊंचा संवाद ये चैतन्य चरितामृत में जिस संवाद का समावेश किया गया है, इसलिए प्रभुपाद इस संवाद को या इस लीला रचना को क्या कहे हैं, ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी लेवल का ये विषय है। तो पीएचडी लेवल का इस विषय को समझने के लिए कितना हमको क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी, और वो तैयारी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मुख्य तैयारी है, मुख्य कार्य है, जितना ये कार्य करे कम ही है, उतने ही चेतना का दर्पण स्वच्छ होगा, और फिर ये उज्ज्वल रस तेज है इस रस में, उसका दर्शन संभव होगा। उस दर्पण में, चेतना के स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंबित होगी, प्रकट होगी, स्फुरित होगी ये लीला, फिर दर्शन संभव है। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराय, निज सुख है ते ताते कोटि सुख पाए। राधा के साथ जो कृष्ण लीला करते हैं तो निज सुख है ते ताते कोटि सुख पाए, उनको करोड़ गुना अधिक सुख राधा के संग में, राधा कृष्ण लीला में प्राप्त होता है। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी घन हय तार पल्लव पुष्प पाता। देखिए कैसे समझाया है। तो वह राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम, तो राधा में जो कृष्ण प्रेम है, या राधा ही मान लो, या राधा का जो कृष्ण प्रेम है, उसको कहा एक वृक्ष है कल्पलता, कल्प वृक्ष है। राधा रानी या राधा रानी का जो प्रेम है वो क्या है, ये सारा वृक्ष है कल्पलता। तो फिर सखीगण क्या है, सखीगण उसी वृक्ष की क्या है, पल्लव पुष्प पाता, उसी वृक्ष की पल्लव, पल्लव मतलब अंकुर, मतलब पत्ते ही, पत्रम ही, लेकिन अभी अभी कोपले, अभी अभी नवांकुरित हुए, उसमें विशेष चमक और क्या होता है, लालिमा, अलग अलग, यस, चिकनापन भी होता है, कोमलता होती है, वेरी गुड। तो ऐसे पल्लव, जैसे वसंत ऋतु में पुराने पत्ते गिर गए, फिर नए ताजे फ्रेश मानसून, नॉट मानसून, सी स्प्रिंग में, तो पल्लव आप समझते हो, आपने देखे होंगे, देखा पल्लव, पल्लव पद पल्लव, पालवी, पालवी अत्या समझ ला, बस असल अपला शब्द हो मराठी माझी, माझी माय बोली, पुष्प, पुष्प समझते हैं, पाता पत्ते, थोड़े पुराने पत्ते। तो ये सब, ये पल्लव पुष्प पाता, ये सब सखिया है उस राधा नामक वृक्ष की। कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचाय, निज सुख है ते पल्लवादेर कोटि सुख होय। तो ये लीला अमृत, कृष्ण लीला अमृत यदि लता के सिंचा, इस वृक्ष को मतलब राधा को ही क्या करो, ये कृष्ण लीला अमृत पिलाओ, सिंचन करो, सिंचाई होती है ना, सिंचाई। आप लोग भी अपने बगीचे में कुछ सिंचाई करते, सिंचाई होती है, पानी से सिंचन होता है। तो राधा का सिंचन कैसे होगा, इस लीला अमृत से जब सिंचन होगा, कृष्ण लीला अमृत से यदि लता के सिंचन, निज सुख है ते पल्लवा देर कोटि सुख है, तो राधा रानी भी सुखी होगी, और उसी के साथ उसी से जुड़ी हुई, उसी का अंग जो है, उसी के, उसी का विस्तार जो है, ये पल्लव पुष्प पाता जो सखिया है, गोपिया है, मंजरिया है, उनको कोटि कोटि अधिक गुना क्या होगा, सुख मिलेगा। तो इस पल्लव पाता पुष्प, ये सखिया गोपिया, इनका सुख कुछ अलग नहीं है, स्वतंत्र राधा कृष्ण से होके वो सुख प्राप्त कर ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। जो भी उनको सुख मिलता है वो राधा कृष्ण से या राधा से ही प्राप्त होता है। राधा सुखी है तो वो सुखी है, राधा के सुख में उनका सुख, राधा के दुख में उनका दुख भी। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मान, तथापि राधिका यत्ने करान संगम। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नाही मान, सखिया नहीं चाहती उनका सीधा कृष्ण के साथ संगम हो, मिलन हो, मिलना जुलना हो, ऐसा उनकी इच्छा नहीं रहती है। तो भी तथापि ऐसे होते हुए भी राधा का तो यत्न प्रयत्न चलता रहता है ताकि सखिया नहीं तुम जाओ 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 मिलो, उनको ढकेलती रहती है कृष्ण के पास। हमको भी ऐसा यानी कि हम ही भक्ति कर रहे हैं, हम ही कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं, और भी 5-10 लोगों को पकड़ के कृष्ण के पास ढकेल सकते हैं खींच के। अब प्रसाद है, नाटक आयो नाटक, ऐसा कुछ कह के ला सकते हैं राधा कुंजी बिहारी के चरणों में। तो राधा रानी जैसे स्वयं ही अपने मिलन से प्रसन्न तो है, लेकिन चाहती कि और भी हो, सखिया उनके पास जाए, तो हम भी औरों को और जीवात्माओं को भगवान के चरणों के पास ढकेलने का प्रयास करते हैं, उनको लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे। नाना छले कृष्ण प्रेमी संगम कराय, आत्म कृष्ण संग हैते कोटि सुख पाय। तो नाना छले कई सारे युक्तियां छल बल से राधा रानी गोपियों को कृष्ण के पास पहुंचाती है, पहुंचाने का प्रयास यत्न करती है। और आत्म कृष्ण संग हैते, तो वो स्वयं राधा जब कृष्ण को मिलती है और उससे जो राधा को आनंद प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना अधिक सुख तब होता है जब वो देखती है कि कृष्ण गोपियों से मिल रहे हैं। अन्योन्ये विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट, तास बार प्रेम देखी कृष्ण होय तुष्ट। तो अन्योन्ये एक दूसरों का, राधा का और गोपियों का, ये इस प्रकार ये रस की पुष्टि के लिए ये इन सब से प्रयास क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जो जो रस है माधुर्य रस है, उसको अधिक कैसे गाढ़ा बनाया जा सकता है। पहले शुरुआत में कोई गन्ने का ही रस है तो उसको कैसे उसका गुड़ बनाया जा सकता है उबाल के, तो उस रस में जो पानी है या रस में और कोई द्रव्य का मिश्रण हुआ है उसको हटा के कैसे अधिक गाढ़ा बनाया जा सकता है। फिर गुड़ ही नहीं उसका कैसे शक्कर बनाई जा सकती है, तो शक्कर ही नहीं फिर खड़ी साकर मिश्री कैसे बनाई जा सकती है, और इतना ही नहीं फिर उसको कैसे थोड़ा कर्पूर भी ऐसे खड़ी शक्कर मिश्री को मिश्री के साथ आप बना दो, क्या भगवान के लिए मिष्टान्न बना दो या खीर बना दो, और फिर थोड़ा मक्खन भी उसमें और थोड़ा कर्पूर, चैतन्य चरितामृत और जगह थोड़ा कर्पूर का भी गंध थोड़ा डाल दो, तो फिर जब मजा आएगा। पूछो नहीं, तोंडला पानी सुटना सुट लगा। तो ये रस को अधिक कैसे पुष्ट, अधिक कैसे गाढ़ा बनाया जा सकता है, तो ऐसा प्रयास अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट। और उसी से क्या होता है, फिर कृष्ण होय तुष्ट, कृष्ण तुष्ट हो गए तो हो गया, और क्या चाहिए। जैसे रस की पुष्टि बढ़ेगी तो कृष्ण की तुष्टि बढ़ेगी। सहज गोपी न प्रेम न ही प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तारक ही काम नाम। स्पष्ट किया है इस बात को यहां राय रामानंद कह रहे हैं। गोपियों का तो भगवान से या राधा का भगवान से जो प्रेम, सहज प्रेम, सहज प्रेम, कैसा प्रेम? सहज प्रेम, स्वाभाविक। नहे प्राकृत काम, इसमें इस प्रकृति का काम नहीं है। प्रकृति कैसी है? तीन गुण से बनी है। तीन गुणों से बनी है ये त्रिगुणमयी माया। कैसी है? त्रिगुणमयी माया, दुरत्यया, इसीलिए कठिन भी उसको पार करना, उसका उल्लंघन करके प्रभु के धाम में पहुंचना। तो ये तीन गुणों वाली जो माया है, और फिर काम कहां से पैदा होता है? काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव। अभी समझ में आ गए, अगर समझे अभी भी होंगे कि नहीं बता दे। तो काम कैसे उत्पन्न होता है? ये संसार में जो प्राकृतिक भौतिक लौकिक जो काम है, ये रजगुण से उत्पन्न होता है। तीन गुणों में से सत्व रज तम में से ये रजगुण से उत्पादन है, उसका उत्पत्ति है काम की। तो ये प्रेम में रजगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है, तमगुण नहीं है, इसलिए अप्राकृत है। काम प्राकृत है, मतलब रजगुण जो एक प्रकृति है उसी से उत्पन्न। नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही, लेकिन कुछ साम्य कोई समानता दिखाई देती है, वो भी राधा कृष्ण भी स्त्री पुरुष है, पुरुष प्रकृति है, संसार में भी स्त्री पुरुष है, तो उनका मिलना जुलना, इनका मिलना जुलना, कृष्ण राधा कैसे उत्कंठा बनी रहती है उनके मिलन की, फिर जब विरह होता है तो विरह की व्यथा होती है। तो ऐसे कुछ साम्य इस प्राकृतिक काम में दिखाई देता है, या प्रेम काम में कुछ साम्य समानता होने के कारण कई कई पर काम काम ऐसे, या राधा कृष्ण का काम, या काम क्रीड़ा, रास क्रीड़ा को काम क्रीड़ा ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है, तो उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। काम क्रीड़ा साम्ये तार नाही, तार कही काम नाम। इसीलिए कहीं कहीं पर काम काम कहां है, लेकिन समझना क्या चाहिए, वो काम नहीं है, वो क्या है? प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। अब काम और प्रेम ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, इसको समझाए हैं। और कैसे और क्या किया जा सकता हमको समझाने सिखाने के लिए? तो देखिए, समझ जाइए और भूलिए नहीं इस बात को, बड़ा महत्वपूर्ण बात यहां कही जा रही। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्य। अन्य स्थान पर और शब्दों में भी कहा है, समझाया है इस विषय को। तो यहां कहा है निजेंद्रिय सुख हेतु, निज इंद्रिय अपने ही इंद्रियों के सुख हेतु जब कार्य होता है उसका नाम है, उसका नाम है काम। अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उसमें कृष्ण आउट, कृष्ण का कोई संबंध नहीं, बस मेरी इंद्रिया और फिर इंद्रियों का विषय, स्त्री के इंद्रिय का विषय है पुरुष, पुरुष के इंद्रिय का विषय है स्त्री। केवल इंद्रिय तो जब तक विषय नहीं है तो इंद्रिय क्या कर सकती है, भूखी रहेगी। ऐसे भूखी, भूखा रखना इंद्रियों का, उसी का नाम क्या है, जानबूझ के इंद्रियों को हम नहीं खिलाएंगे, किसी भी इंद्रिय को नहीं खिलाएंगे। तो उसको क्या क्या नाम देंगे हम लोग, उसी का नाम है तपस्या। एकादशी के दिन हम तपस्या करते हैं, जिह्वा के लिए तपस्या, फिर और कानों के लिए भी तपस्या, भालो न खाई वो, और ग्राम कथा न सुनी वो, ग्राम कथा नहीं सुनेंगे तो कान की तपस्या हुई, काम के लिए तपस्या, ऐसे कई सारी बातें। मतलब भोग विलास नहीं, पूरा कंट्रोल, ऐसा जीवन। तो आत्मेंद्रिय प्रीति, तो अपने इंद्रियों की प्रीति, वो इंद्रिय तो आनंद तब लुटेंगे जब विषय विषय होंगे, फिर विषय आनंद ध्यायतो क्या विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। जब हम इंद्रियों का ध्यान करते हैं, और टेलीविजन का धिक्कार इसीलिए है क्योंकि टेलीविजन ही हमें कितनी सारी विषयों का ध्यान कराता है, याद दिलाता है, कई सारे इंद्रिय भोग के योजनाएं या युक्तियां, और उसे हम सीखते हैं, मैं भी वैसे, गुड आइडिया, समझ गया, नेक्स्ट कौन, मैं। फिर वो चोर, कई चोर भी है, कई डाके डालने वाले भी सिनेमा देख के आते हैं, कई बार जब पकड़े गए और जब पता लगवाया कैसे कैसे उन्हें डाका डाला था, उन्होंने वैसा ही डाका डाला था जैसे अमिताभ बच्चन ने, उनका भी डाकू क्या क्या बन जाते हैं, या उनके भी। तो जो हम लोग देखते हैं टेलीविजन में, दूरदर्शन करते हैं या पास का दर्शन करते हैं, तो फिर आइडिया आती है, हम भी करेंगे। फिर शॉपिंग के आइडियाज आती है, ये खरीदना चाहिए, मुझे गले लगाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो, जीना तो क्या जीना, टॉयलेट के पेपर के बिना, उसकी जाहिरत आजकल टॉयलेट पेपर, हमने तो एक टॉयलेट में देखा, देखना पड़ा है, उसमें लिखा था लग्जूरियस, ये टॉयलेट पेपर कैसा है, लग्जूरियस, ये प्रगति है। टॉयलेट पेपर भी हो कैसा होना चाहिए, लग्जूरियस, नॉट ओनली बेडरूम, बेडरूम तो होना ही चाहिए, कार भी लग्जरी का आइटम होना चाहिए, टॉयलेट पेपर भी लग्जरी आइटम। लेकिन कॉन्स्टिपेशन ही हुआ है तो उसके लिए क्या उपयोग है, मिजरी पेपर। तो ध्याय तो विषयान पुंसाम, तो विषयों का ध्यान करते हैं और फिर उससे आसक्त होते हैं, आसक्ति जब तीव्र हो जाती है फिर संगा संजायते कामः, काम उत्पन्न होता है बारंबार, पुनः पुनः जब देखते हैं किसी चीज को, सुनते हैं किसी वस्तु के संबंध में, तो उसका फल परिणाम काम में होता है। और काम की जब तृप्ति नहीं होती है तो कामात क्रोधो भी जायते, काम से उत्पन्न होता है क्रोध। तो काम है बड़ा भाई और क्रोध है उसका छोटा भाई। श्रील प्रभुपाद लिखते मिस्टर मिस्टर काम, मिस्टर लस्ट, मिस्टर एंगर। तो ये जहां काम है वहां क्रोध होगा, वहां झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, फिर परिवार में, समाज में, देश में मानव जाति लड़ती रहेगी। शत्रु है काम और क्रोध है, क्रोध भी शत्रु है। तो निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, तो काम को समझने का यहां प्रयास हो रहा है। काम है कौन, कहां से आता है, जिसको यहां का निज इंद्रिय सुख, अपने इंद्रियों को सुख देना, उसी को काम कहा है। और अब प्रेम की भाषा, प्रेम की व्याख्या, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्य। कृष्ण सुख, हमारी इंद्रिया अगर कृष्ण को सुख दे रही है तो फिर क्या हो गया, वो हो गया प्रेम। गोपी भाव वर्य, वही तो प्रेम है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, वही बात है। भक्ति क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, मतलब क्या कहा गया, ऋषिकेन मतलब ऋषिक मतलब इंद्रिया, और ऋषिकेन मतलब इंद्रियों से। फिर क्या किया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हमारे इंद्रियों से जब हम ऋषिकेश भगवान की सेवा करेंगे तो क्या हुआ, भक्ति रुच्यते, उसी का नाम है भक्ति, हमने भक्ति की। और वही प्रेम है, कृष्ण प्रेम है। निजेन्द्रिय सुख वांछा नहीं गोपीकार, कृष्ण सुखे दीते करे संगम विहार। निजेन्द्रिय सुख वांछा, गोपियों में निज इंद्रिय की सुख की वांछा कभी उदित ही नहीं होती, कभी सोचती भी नहीं हो, अपने इंद्रिय की वांछा इच्छा जगती नहीं। कृष्ण सुख दीते करे, बस कृष्ण को सुखी करना है, वही उनके विहार, वही उनके विलास, वही उनका जीवन है। सही गोपी भावामृते जार लोभ होय, वेद धर्म लोक त्यजी से कृष्णे भजाय। तो सही गोपी भावामृते जार लोभ है, जिस व्यक्ति का लोभ है, लोभी मतलब इसको प्राप्त करना ही है, लोभ और प्राप्त करना, करने की इच्छा होना, या लोभी, या जो प्राप्त किया उसको गवाना नहीं, खर्च नहीं करना, ऐसा वो भी लोभी, लोभी वृत्ति ही है। चिक्को मारवाड़ी, कैसा मारवाड़ी, चिक्को मतलब लोभी। तो लोभी बनो, और वो गोपी भाव अमृत को प्राप्त करने के लिए लोभी बनो। तो कितना भी धन कमाया तो संतुष्ट नहीं है, और कमाने की इच्छा जगी रहती है। उसी प्रकार ये राधा भाव अमृत उसको प्राप्त करने की लोभ वृत्ति का स्वागत है। वेद धर्म लोक त्यजी कृष्ण से कृष्ण भजाय, वेद धर्म लोक धर्म त्यजी त्याग कर, मतलब ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कई विघ्न आ सकते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहेंगे आपको, उन्होंने क्या किया नहीं जानते हो क्या, पुंडलिक ने क्या किया, क्या किया, माता पिता की सेवा करो, तो चलो करो सेवा, तुम्हारे समक्ष है हम। लेकिन वे नहीं जानते कि पुंडलिक के माता पिता तो बड़े वैष्णव थे, आप भी थोड़ी वैष्णवता को स्वीकार करो तो फिर हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपका संग नहीं छोड़ेंगे, खूब सेवा करेंगे आपकी। लेकिन जो दुर्जन है, कृपण दुर्जन विफले सेविनु कृपण दुर्जन का विफले, खाली फुकट की सेवा हो गई, विफले सेविनु कृपण दुर्जन, कृपणों की, कृपण मतलब कंजूस, कृपण एक होता है कृपण, दूसरा होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब विशाल दृष्टि का, उच्च विचार का, उसके बिल्कुल विपरीत, ब्राह्मण के बिल्कुल विपरीत होता है कृपण, कृपण और दुर्जन, एक सज्जन दूसरा दुर्जन। लेकिन हमको सेवा करनी किसकी पड़ती है, विफले, विफले खाली फुकट, विफले सेविनु कृपण दुर्जन। लेकिन होता क्या है, चपल सुख लभ लागी रे, चपल सुख, उसमें कुछ चपल सुख प्राप्ति हो सकता है, क्षण भंगुर सुख प्राप्ति हो सकता है। लेकिन याद रखना भक्तों, या ओ इस गीत के रचयिता ही कह रहे हैं, कमल दल जल जीवन टल मल, ये जीवन कैसा है, कमल के दल पंखुड़ी पर बैठा हुआ एक क्या जल दल, कमल दल जल, एक जल बिंदु है, वो कितना समय टिक सकता है, वो टलमल तो चल ही रहा, अब भी गिर सकता है, तब गिर सकता है। कमल दल जल जीवन टल वल, इसीलिए क्या कहा है, भजहु हरि पद नीति रे। तो इसके बाहर कई बातें हैं, वेद धर्म है या लोक व्यवहार है, उसको त्यजी, उनको त्याग के, गोपियों को भी रोक रहे थे उनके घर वाले, रुक गई गोपियां, नहीं रुकी, कई सारी गोपियां कई सारे कार्य के मध्य में बीच में थी, अधूरा ही था, अधूरा ही छोड़ के दौड़ी, जब भगवान ने मुरली बजाई तो दौड़ पड़ी और कुछ गोपियों को तो ऐसे पकड़ के रखा घर वालों ने, छोड़ ही नहीं रहे, तो उन गोपियों ने अपना शरीर को त्याग दिया, ले जाओ तुम्हारा शरीर, मैं तो चली। वो सीधे, वो ऐसी गोपियां जो शरीर त्याग करके जो आगे बढ़ी और गोपियों से भी आगे पहले पहुंच गई, बाकी तो चल के आ रही थी। लेकिन इस कुछ गोपियों को ऐसा कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन, आकर्षण का प्रदर्शन करना पड़ा, तो भगवान ने उनकी ओर विशेष ध्यान दिया और उनको ऐसे ही कुछ क्षणों में वहां पहुंचा भी दिया। तो गोपियां कृष्ण के लिए प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, क्यों नहीं, और किसके लिए प्राण। कृष्ण के लिए ही, कृष्ण ही अधिकारी है और कृष्ण के भक्त, भक्तों का भी अधिकार है, वैष्णवों का अधिकार है। तो आप ऐसे बनो माता पिता, फिर हम बनेंगे आपके पुजारी, वो उदाहरण तो तभी पूरा होगा जब आप भी अच्छे सच्चे कुछ साधक भक्त बनोगे, तो बनेंगे हम पुंडलिक। तो हमारे उत्तरदायित्व का ही आप स्मरण हमें नहीं दिलाना, आपका क्या उत्तरदायित्व है उसको भी समझो, उसको उस पर अमल करो। वेद धर्म लोक त्यजी से कृष्णे भजाय रागानुग मार्गे तारे भजे सही जन पाय व्रजे व्रजेन्द्र नंदन। तो रागानुग भक्ति का परिणाम या फल क्या है, जो रागानुग मार्ग से भक्ति करते हैं, ये रागानुग राधा रानी गोपियों का जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है, रागानुग मार्ग है। रागानुग राग के पीछे अनुगमन करते हैं, राग ही उनको प्रेरित करता है, राग जब उत्पन्न होता है राग या भाव तो उसके वश के कारण वो व्यक्ति कहां पहुंच जाता है, सही जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, उनको ब्रजेंद्र नंदन प्राप्त होते हैं। ब्रज लोके रकोन भाव लैया ऐ भजे भाव योग्य देह पाइया कृष्ण पाय ब्रजे। तो ब्रज लोकेर कोण भाव, तो ब्रज लोक के कई भाव है, उन भावों में से एक भाव को अपना के श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जब भक्ति करते वृंदावन में किसी एक भक्त का अनुगत्य, फिर गोपी का भी है या ग्वाल बाल है या वात्सल्य भक्ति के आचार्य नंद महाराज है, यशोदा महारानी है, तो ब्रज लोकेर कोण भाव लैया जे भजे, जो भजते हैं भाव योग्य, जिस प्रकार के भाव को अपनाए हैं उसके योग्य, देह पाइया कृष्ण पाए ब्रज, और उस प्रकार का भाव की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके वो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन को वृंदावन में प्राप्त करेगा। ताहाते दृष्टांत उपनिषद श्रुतिगण राग मार्गे भजी पाइला ब्रजेंद्र नंदन, और इसके कई सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में, उसके उदाहरण भी वे दिए हैं। राग मार्ग के अंघ्री पद्म सुधा च कहे कृष्ण संगानंद विधि मार्गे ना पाइये ब्रजे कृष्ण चंद्र। अब दूसरे एक मार्ग की यह बात कही गई है, एक तो अब हम लोग मार्ग सुन रहे थे कौन सा, और एक राग मार्ग या रागानुग मार्ग, और दूसरा है विधि मार्ग, एक रागानुग भक्ति दूसरी वैधि भक्ति। ये सब चर्चा वैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आई हुई है, रूप गोस्वामी खूब किए हैं, आपके पास है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, किनके किनके पास है भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ, जिनके घर में है वही हाथ ऊपर करेंगे, ये नहीं कि आपने नाम सुना है इसलिए हाथ ऊपर हो रहा है, कईयों के पास है, अधिकतर भक्तों के पास नहीं है, धन्यवाद। तो ये भक्ति का साइंस ऑफ भक्ति योग प्रभुपाद कहे, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ है ये क्या है, भक्ति का शास्त्र है, भक्ति सीखनी है तो भक्ति का शास्त्र सीखना होगा, तो भक्ति रसामृत सिंधु से सीखा जा सकता है। विधि की बातें, कोई निषेध की बातें, ये भक्ति रसामृत सिंधु से सीखी जा सकती है। तो जिनके पास नहीं है आप जरूर लीजिए, पढ़िए, समझ में नहीं आता तो प्रश्न पूछिए, कई बार सेमिनार्स भी होते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के आधार पर, हम लोग पंढरपुर में भी करते हैं, यहां भी जहां तहां वृंदावन में होते हैं। तो गंभीर भक्त बनना है तो शास्त्र सीखना होगा। शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, शास्त्र को सीखे समझे बिना अगर कोई कार्य करता है तो क्या होगा, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। उस व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलेगी, साधना तो कर रहा है लेकिन सिद्धि तब होगी जब वो शास्त्र का अध्ययन करेगा, उसको सिद्धि नहीं होगी। न स सुखम, सुख को वो प्राप्त नहीं करेगा, और न पराम गति। पराम गति क्या है, वो जो दूरदर्शन भगवान जहां रहते हैं वो भगवान का धाम, वो जो लक्ष्य है, वो जो वहां नहीं पहुंच पाएगा वह व्यक्ति जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हुए कुछ कर ही रहा है। जैसे हम हिंदू समाज में लोग करते रहते हैं, कम से कम कोई बड़ का, बरगद का, पीपल का पेड़ ढूंढ के क्या करेंगे, पानी तो चढ़ाएंगे ही, वो भी एक धर्म हुआ, वो भी एक धर्म हुआ। लेकिन कुछ लोग तो वो पानी पीपल को डाला जा रहा है उसी को क्या मानते हैं, ये पूर्ण धर्म हुआ। ये उदाहरण के लिए कहा जा सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति कुछ अंश मात्र का अपनाया हुआ है और समझता है कि यही पूर्ण धर्म हुआ, हमने सारे अपने फर्ज निभाए, उत्तरदायित्व तो पूरा किया मैंने, वो शुरुआत हो सकती है ऐसे तैसे। लेकिन शास्त्र, शास्त्र सीखना होगा, साधु शास्त्र आचार्य उनके प्रमाण आधार होने चाहिए हमारे जीवन के, हमारे कार्यकलापों के, हमारे विधि विधानों के, जीवन के, साधना भक्ति के। तो एक तो रागानुगम मार्ग और दूसरा विधि मार्ग, ये सब चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में है हमने कहा। तो जो विधि मार्ग से भक्ति करते हैं वे गोलोक नहीं जाएंगे, वे जाएंगे आध्यात्मिक जगत में तो प्रवेश होगा, लेकिन कहां तक उनकी पहुंच है, वो वैकुंठ में जाएंगे। विधि मार्ग से आगे बढ़ के विधि पूर्वक भक्ति तो करेंगे लेकिन वे वैकुंठ में उनका प्रवेश रागानुग मार्ग। रागानुग मतलब ये सब राग है, वैकुंठ में कुछ राग लिमिटेड है, सारे रस तो प्रकट नहीं है, अधिकतर दास्य भाव का ही प्राकट्य है। हम है दास और प्रभु क्या है, ईश्वर है, वे महान है, हम लहान है, हम छोटे हैं, दास है, अंश है, ये भाव अधिकतर प्रधानता दास्य भाव की है। ये सख्य भाव, ये वात्सल्य भाव और उसमें भी फिर माधुरी रस, ये तो गोलोक नामक जो क्षेत्र प्रदेश साम्राज्य है, राधा कृष्ण का अपना निवास है, वहां इसका प्रदर्शन है। तो हुआ कुछ व्याख्याएं भी करनी पड़ती है, इसीलिए हमें जहां तक पहुंचना था उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने में अब वैसे दौड़ेंगे तो ठीक है, दौड़ते हैं हम लोग, अब व्याख्या नहीं करेंगे। नायं सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम आत्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। तो इसका उदाहरण क्या है, तो जैसे गोपिका सुत जो है कृष्ण, ये तो यशोदा को ही प्राप्त है, ऐसी भक्ति, ऐसा वात्सल्य ज्ञानी प्राप्त नहीं कर सकते, शुष्क चिंतक कहा है, या कोई तपस्वी नहीं कर सकते। इस पर अधिकार तो वात्सल्य भाव में स्थित यशोदा जैसे भक्तों का ही है। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिलेह नाही पाय ब्रजेंद्र नंदने। तो गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, तो ऐश्वर्य ज्ञान जो वैधि भक्ति करने वाले उनका अधिक ज्ञान की प्रधानता, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होती है, लेकिन फिर वो ज्ञान शून्य होगा और भक्ति से भरपूर होगा तो तभी वो ब्रजेंद्र नंदन को, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। गोपी का अनुगत्य करते हुए ऐसा कुछ यहां कहे हैं। तहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिल भजन तथापि ना पाइल ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। आहा, लक्ष्मी तो तपस्या कर रही है उसी वृंदावन में। लक्ष्मी की लोग चर्चा कर चुके, कल या परसों लक्ष्मी का स्मरण किया था। तो हुआ तो उस वन में लक्ष्मी वन, लेकिन उसको कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे। क्या अड़चन है, क्या समस्या है उसकी? वो अनुगत्य स्वीकार नहीं करती। गोपी अनुगत्य बिना संभव नहीं है। तपस्या तो कर रही है लेकिन अनुगत्य नहीं, या गोपी का भाव नहीं लक्ष्मी के पास, या अपने ही भाव में ऐश्वर्य ज्ञान में वैभव में वो स्थित है। इसीलिए तथापि ना पाइल ब्रजे, वो लक्ष्मी को भी ब्रजनंदन प्राप्त नहीं हुए, अनुगत्य के अभाव से या गोपी भाव के अभाव से। एतशुनि प्रभु तारे कैल अलिंगन दुई जने गला गली करे न क्रंदन। और ये बात जब चैतन्य महाप्रभु सुने तो झट से आलिंगन दिए राय रामानंद को और क्रंदन करने लगे, आंसू बहने लगे उनके आंखों से। अतएव प्रेम वेशे रात्रि गुवाइया प्रात काले निज कार्य दुहे गेला। तो इस प्रकार पूरी रात ये कथा का श्रवण, ये राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम के तत्व का निरूपण, विश्लेषण, चर्चा पूरी रात होती रही। और उसमें से कितना सारा समय एक दूसरों को आलिंगन देते हुए और क्रंदन करते हुए, और गला कितने बार उनका रुद्ध हुआ, गदगदया रुद्ध या गिरा, उनका गला रुद्ध होता था, गदगद होता था कि वह शिव सुख नारद प्रेमे गद 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 गदागद नहीं गदा गद हिला रहे गद गद गला कैसा होता है सुखदेव गोस्वामी का, ये शिव जी का, नारद जी का, जब वे भगवान की आरती गाते हैं। इस आरती में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? आरती करे न ब्रह्मा आदि देव गण। गौरांग महाप्रभु की आरती कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा आदि देव गण आरती उतार रहे हैं। तो शिव सुख नारद गा रहे हैं और गाते वक्त उनका गला गद गद, आवाज नहीं, प्रेम का ये विकार। तो वैसा होता रहा ये चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद का, उसमें कितना सारा समय उनका व्यतीत होता था उस स्थिति में। मोरे कृपा करिले तुमार इहा आगमन दीन दश रही शोध मोर दुष्ट मन। तो राय रामानंद कहते हैं कृपा करो, कृपा करके ही तो आप यहां पधारे हो, आपका आगमन हुआ है। तो अब क्या करो, दस एक दिन के लिए रहो ना, तो फिर होगा क्या? शोध मोर दुष्ट मन, ताकि मेरा दुष्ट मन का शुद्धिकरण होगा, पवित्र होगा मेरा मन आपके संग से। तुम बिना अन्य नाही जीव उधारिते, तुम बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते, आपके बिना तो, और तुम बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते, और कौन प्रेम दे सकता है? कृष्ण प्रेम